ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्कधुनावदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 12 पूर्ण समाज चार आध्यात्मिक वर्ग। इस अध्याय के आज 9 नंबर श्लोक। ननु अग्नि प्रमदा नाम धृतकुंभ समः पुमान् सुतामपि रहः जह्यात् अन्यदा यावत् अर्थकृत्। नानग्नि प्रमदा नाम घृतकुंभ समः पुमान् सुतामपि रह जैषात् अन्यदा यावत् अर्थकृत्। नानोऽग्निः प्रमदा नाम घृतकुंभ समः पुमान् सुतामपि रह जह्यात् अन्यदा यावत् अर्थकृत्। नानु अग्नि प्रमदा नाम घृतकुंभ समः पुमान् सुताम अपि रह जह्यात् अन्यदा यावत् अर्थकृत्। नानु अग्नि प्रमदा नाम घृतकुंभ समापुमान् सुतामपि रहो जह्यात् अन्यदा यावत् अर्थकृत्। नानु अग्नि प्रमदा नाम घृतकुंभ समापुमान् जह्यात् अन्यदा यावत् अर्थकृत्। नानोऽग्नि प्रमदा नाम घृतकुंभ समः पुमान्
सुतामपि रहो जह्यात् اور کوئی ماتائیں شبدارتھ نانو نشچہی اگنی ہی اگنی پرمدا استری پروس کے من کو موہنے والی نام نام ہی گھیت کمبھ گھی کے برتن کے سمہ سمان پمان منشیہ سوتام اپی اپنی پتری کے بھی رہ ایکانت ستھان میں جیہات ساتھ نہ رہے انیدا کسی انی استری کے ساتھ بھی جاوت جتنا ارتھکرت آوشیک ہو انوباد تاتپر کرشن کپا سمرتی ابھے چرناروند بھکتی ویدانت سوامی شیل پربھوپاد جی کے دوارا جگد گرو شیل پربھوپاد کی جائے انوباد استری اگنی کے تلیہ ہے اور پروش گھی کے بھانڈے کے سمان ہوتا ہے اتے پروش کو چاہیے کہ اپنی پتری کے ساتھ بھی ایکانت میں نہ رہیں اسی پرکار اسے انی استریوں کی سنگتی سے بچنا چاہیے استریوں سے آوشیک کاریہ کے لیے ہی ملنا چاہیے انیتھا نہیں دوہرائیے استری اگنی کے تلیہ ہے اور پروش گھی کے بھانڈے کے سمان ہوتا ہے اتئے پروش کو چاہیے کہ اپنی پتری کے ساتھ بھی ایکانت میں نہ رہیں اسی پرکار اسے انی استریوں کی سنگتی سے بچنا چاہیے استریوں سے آوشیک کاریہ کے لیے ہی ملنا چاہیے انیتھا نہیں تاتپریہ جدی گھی کا برتن اور اگنی پاس پاس رکھے جائے تو برتن کا گھی نشچت روپ سے پگھلے گا استری کی اپما اگنی سے اور پروس کی گھی کے برتن سے دی گئی ہے کوئی کتنا ہی اندریہ سنجمی کیوں نہ ہو استری کی اپستھتی میں اس کا سنجمت رہ پانا لگ بھگ اسمبھو ہو جاتا ہے بھلے ہی وہ استری اس کی اپنی پتری ماتا یا بہن ہی کیوں نہ ہو نسند ہے سنیاسی تک کا بھی من وچلت ہو جاتا ہے اتے ویدک سبھیتا پروشوں تتھا استریوں کے ملنے پر پرتبندھ لگاتی ہے جدی کوئی پروش استری کے اس سنجوگ کے نشیدھ کے مول سدھانت کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ نیرا پشو ہے یہی اس شلوک کا بھاوارتھ ہے اوم اجانات میرندھسیا جانجن شیلاکیا چکھرونمیلتم جینا تسمائی شری گروہ نمہ شری چیتنیا منوبھیشٹم ستھاپتم جن بھوتلے سویم روپہ کدا مہم ددتی سوپدانتکم وندے اہم شری گروہ شری یوتا پدکمالم شری گرون ویشنمبھامش شری روپم ساگر جاتم سہگنا رگھناتھانیتم تنگ سجیوم سادویتم سا اوبھوتم پریجنا سہیتم کرشنا چیتنیہ دیوم شری رادھا کرشن پدان سہگنا للیتا شری وشاکھانیتمش مکم کروتی واچالم پنگوں لنگھیتے گریم یتکرپاتمہم وندے شری گرو دینتارینم پرمانند مادھوم شری چیتنیشورم نمو وشنو پادائے کرشن پرشٹھائے بھوتلے شریمتے بھکتی ویدانت سوامینیتی نامینی نمستے سرسوتی دیوے
गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नानु अग्नि प्रमदा नाम धृतकुंभ समः पुमान सूतामपि रहो जयहात अन्यदा जावदर्थकृत्। स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के भांडे के समान होता है, अतः पुरुष को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में न रहें। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से बचना चाहिए, स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही केवल मिलना चाहिए अन्यथा नहीं। तो इस अध्याय में नारद मुनि विशेष रूप में युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं पूर्ण समाज का आध्यात्मिक वर्ग, चार पूर्ण समाज के चार वर्ग कौन से चार वर्ग, चार वर्ण चार आश्रम, चार वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। इस अध्याय की प्रारंभ से एक नंबर श्लोक से लेकर आप भी आठ नंबर श्लोक तक पढ़ चुके हैं, तो इससे विशेष में वो ब्रह्मचारियों के लिए था। सबसे पहला ही था कि ब्रह्मचारी गुरु कुले वसंदांतो गुरु हितम आचरण दास वतनीच गुरु सुदृढ़ सुहृद। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में रहकर गुरु को ही अपने एकमात्र सुहृद मित्र जानते हुए गुरु के निर्देशन में ही भक्ति प्रारंभ करना चाहिए, भक्ति में सदा रहना चाहिए। इसे लेकर आठ नंबर श्लोक जो कि काल चर्चा की गई थी कि यदि गुरु पत्नी युवती हो तो युवा ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह न तो उससे अपने बाल कढ़वाए, न शरीर में तेल मालिश करवाए और न उसे माता तुल्य प्यार से स्नान कराने दें। यहां तक ये आठ नंबर श्लोक तक ये उपदेश सारे ब्रह्मचारियों के लिए था। आज के श्लोक भी ब्रह्मचारियों के लिए भी उपयोग है और गृहस्थों के लिए, वानप्रस्थी के लिए, सन्यासी के लिए, चार वर्ग सभी के लिए उपयोग है। इन श्लोक में शब्द आता है कि सुतामपि, सुतामपि अर्थात अपनी पुत्री से भी, पुत्री के भी, अर्थात कोई ब्रह्मचारी का कोई पुत्री नहीं होता है, ब्रह्मचारी का पुत्री होता है तो पुत्री गृहस्थ की होता है, गृहस्थ वानप्रस्थ ये लोग का है, बात सन्यासी का पूर्वाश्रम में कोई पुत्री हो सकता है। तो इसलिए ये श्लोक सभी के लिए प्रयोज्य है, ये चारों वर्ण सभी वर्ग के जो मनुष्यों के लिए ये उपयोग है। इसलिए पुमान शब्द जो आता है तो उपाय जिसको अर्थ करते हैं मनुष्य, मनुष्य मात्र जो इसको मनुष्य का शरीर है, मनुष्य जन्म है, सभी के लिए ये श्लोक प्रयोज्य है। इसलिए नानु अग्नि प्रमदा नाम, प्रमदा शब्द का अर्थ क्या, स्त्री, लेकिन पुरुष प्रभुपाद जी इसको अनुवाद करते पुरुष के मन को मोहने वाली, ऐसा स्त्री जो विशेष रूप में
पुरुषों के मन को मोहित करने वाली। ऐसे जो स्त्री को किसी के साथ तुलना की गई यहां पर, अग्नि के साथ, और पुरुष को घी का भाड़े के साथ, घी का भंडे के साथ तुलना की गई। कभी कभी हम देखे हैं ठंडी का टाइम, विशेष में अभी आने वाला विंटर सीजन, ठंडी का समय में घी के हड़े पर क्या होता है, बढ़ जाता पड़े, बा विशेष रूप में कभी यदि कोई हिल स्टेशन में जाके रखे हो, देखोगे शिमला में रख दोगे, बा कोई दार्जिलिंग किसी हिल स्टेशन में भी रख दिया, तो घी इतनी कठिन हो जाते हैं, उसका ऊपर खुरच भी लगाना कठिन हो जाता है, लगता कि पत्थर ही जैसा बन गया है, स्टोन एकदम परे है, पत्थर जैसे हो गया। लेकिन फिर भी ऐसे ही घी का घड़े को बा घी का भाड़ पात्र को यदि किसके पास रखोगे, अग्नि के पास रखा जाए, फिर वो पिघलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, चाहे बाह्य रूप से हम देखते हैं इतने सालों से ब्रह्मचारी है, 50 साल हो गया, वानप्रस्थ में भी आ गया, या कोई सन्यासी आश्रम में भी है, लेकिन यदि फिर भी किसी ना किसी का माने ऐसे बाह्य रूप से व्यक्ति की पूरा अनिष्ठिक ब्रह्मचारी है, अनिष्ठिक ग्रस्त अपने पत्नी के अलावा दूसरे कहीं उसकी मति भी नहीं है, वानप्रस्थ है, पूरा अनुभव है उसके पहले का सारा वन ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम पूरा अनुभव है, बस सन्यासी क्यों न हो, प्रभुपति सन्यासी के मन को भी विचलित कर सकता है। किसी भी वर्ण आश्रम यदि रहता है, लेकिन यदि एकांत में स्त्री के साथ संग करेगा, बस थोड़ा सा बातचीत करे, एकांत में रहकर कुछ चर्चा करेगा, तो उसके मन इंद्रियां विचलित हो सकते हैं, इसीलिए महाप्रभु ने रिजेक्ट किया है व्यक्ति को, किसको, छोटा हरिदास को, एक आदर्श निभाने के लिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि यदि प्रीति रखी बारे चाहो गौरांग रसने, छोटा हरिदास कथा थाके जन मने। यदि वो गौरांग महाप्रभु के चरण में अपने प्रेम को स्थापना करना चाहते, बाप उनको प्रसन्न करना चाहते हो, तो सदा इस घटना को याद करो। कौन सा घटना, छोटा हरिदास की कथा। छोटा हरिदास लगभग वो बैरागी आश्रम में था, क्षेत्र संन्यास ले रखा था, वृंदावन कहां रहता था, पुरी में, जगन्नाथपुरी में, लेकिन वैसे संयमी था, महाप्रभु के लिए प्रत्येक दिन शाम को जाकर गीत गाता था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को मदद करता था, कि विद्यापति चंडीदास बा जयदेव गोस्वामी बा बिल्लमंगल ठाकुर के रचित गीतों को गाने में ये भी बड़े प्रवीण था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी गाते थे तो ये पीछे मदद करता था, याद कराता था। महाप्रभु इसके गायन में बड़े प्रसन्न होते थे, अच्छे गायक था, बहुत सुंदर कंठ में उसके सुललित कंठ था। लेकिन एक बार गौरांग महाप्रभु की के पार्षद थे, उनके नाम क्या था, भगवान आचार्य। तो ऐसे ही कृष्ण लीला में वो एक ग्वाला भी, द्वादश गोपाल में से एक गोपाल भी माने जाते हैं, बहुत उन्नत भक्त थे, साक्ष्य रस के थे, तो इसलिए उनको, उन्होंने एक दिन चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में निमंत्रण दिया, बुलाया खाने के लिए। इसे महाप्रभु हर आदमी के घर में नहीं खाते, पूरी में जब रहते थे कहते कि मैं लाखपति के घर में खाता हूं, जो कम से कम एक लाख नाम जपा करता हूं। लेकिन भगवान आचार्य के साथ महाप्रभु के अच्छे संबंध था, तो उन्होंने उसका निमंत्रण स्वीकार किया। तो भगवान आचार्य ने तो कुकिंग करता था, लेकिन उन्होंने छोटा हरिदास को बुलाया, मुझे मदद करना कुकिंग में, महाप्रभु को निमंत्रण किया, लेकिन तुम आकर थोड़ा मुझे मदद करना है। तो छोटा हरिदास गया भगवान आचार्य घर में, लेकिन भगवान आचार्य कहा कि मेरे घर में तो अच्छा क्वालिटी के चावल नहीं है, ये अच्छे क्वालिटी के चावल किसके पास है, माधवी दासी है, सिक्खी माइती की जो बहन है माधवी दासी, उसके पास में बहुत अच्छे क्वालिटी एक क्वालिटी के चावल है, बासमती चावल, महाप्रभु को जो खिलाऊंगा तो एकदम बेस्ट क्वालिटी का चावल होना चाहिए। तुम जाकर मेरे नाम लेकर कि भगवान आचार्य ने बोले गौरांग महाप्रभु को निमंत्रण किए हैं, तो इसलिए आप एक मान चावल दे दो मुझे, एक मान का अर्थ
900 ग्राम लगभग मान होता है, एक पट होता, पात्र होता है जिसको चावल मापने में सहायता करते हैं। एक मान मीन्स लगभग 900 ग्राम चावल होगा कि चावल लेके आना। तो भगवान आचार्य कहने पर छोटा हरिदास गए हैं, और माधवी दासी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जो जगन्नाथपुरी में गौरांग महाप्रभु अंतरंग भक्त में से स्वरूप दामोदर गोस्वामी, राय रामानंद, सिक्खी माइती और सिक्खी माइती के बहन है कौन, माधवी दासी। राधा कृष्ण की लड़ा में है माधवी दासी, राधारानी की पर्सनल सर्वेंट माने जाते थे, राधारानी की दासी थी। हरे कृष्ण। तो बहुत उन्नत भक्त थी, ऐसे भौतिक दृष्टि से हम देख सकते कि प्रौढ़ अवस्था में थी, लगभग 45 बा 40 से ऊर्ध उम्र में, 45 से 50 उम्र के अंदर वो प्रौढ़ अवस्था में थी। लेकिन भगवान आचार्य गए और सिक्खी माइती को, उनके घर में और कोई नहीं थी, सिक्खी माइती थी भाई, तो कहीं सिक्खी माइती की बहन माधवी दासी थे। सिक्खी माइती जगन्नाथ मंदिर में क्या करते थे, माधवापन जी का लिखते थे, और डेली जगन्नाथ मंदिर में उनकी सेवा था, प्रत्येक दिन डायरी लिखना जगन्नाथ मंदिर से सुबह से शाम तक जो घटना होता। तो इसलिए माधवी दासी के पास में उन्होंने जाकर कहा कि भगवान आचार्य ने मुझे भेजे हैं, और गौरांग महाप्रभु को इन्होंने निमंत्रित किया, और उनके लिए उनको अच्छा क्वालिटी की चावल चाहिए। तो माधवी दासी ने तुरंत बड़े प्रसन्न होकर कि महाप्रभु की सेवा में मेरे चावल लगेगा, सोचकर एक मान चावल दे दिया किनको। लेकिन चावल लेने के बाद उनसे कुछ समय वहां पर खड़े होकर कुछ थोड़ा सा दुख सुख कुछ बातचीत हुए, क्या बातचीत हुए किसको पता नहीं है, वहां उल्लेख नहीं की गई, लेकिन दोनों में कुछ बातचीत थोड़ा सा। इतने उन्नत श्रेणी के भक्त है तो उन्होंने कोई फालतू प्रजल्प नहीं किए होंगे, ये दोनों महान उन्नत गौरांग पार्षद है, गौर पार्षद है। लेकिन कुछ समय बातचीत करने के बाद फिर चावल लेकर वो आ गए कौन, छोटा हरिदास। और भगवान आचार्य जो चावल को कुकिंग किए और अन्न व्यंजन से बने, बहुत प्रकार के व्यंजन बा सब्जियां बनाए, और महाप्रभु के लायक जैसे महाप्रभु खाते हैं गौर प्रिय शाक से बने, भिन्न प्रकार के शाक भाजी दाल सब बनाकर रेडी करके रखे हैं। केले की पत्ता में, केले की पत्ता को धोकर इसको डाले, इसके बीच में राइस, राइस के ऊपर घी, घी के ऊपर तुलसी डाल के, तुलसी मंजरी भी डाल के रखे हैं, नींबू, चारों साइड में व्यंजन और दाल साग सब रखा हुआ। गौरांग महाप्रभु स्नान करके आए, कहां से, समुद्र से स्नान करके डायरेक्ट आए भगवान आचार्य जी घर में, क्यों निमंत्रण इधर था। तो भगवान आचार्य ने नहीं, जो महाप्रभु आए देखे कि राइस इतनी सुंदर बासमती, इतनी बहुत खुशबू, आजकल के हमारे ये बासमती में कोई खुशबू नहीं होता है, लेकिन वो बासमती बहुत खुशबू था। महाप्रभु ने कहे कि अर्ण भगवान आचार्य तुम बड़े भाग्यवान हो, इतने सुंदर अर्ण तुमने आज कृष्ण को अर्पण किया है, क्योंकि तुलसी ऊपर रखा गया, तो महाप्रभु से जी की अर्पण हो चुका किसको, भगवान को। तुम बड़े भाग्यवान, इतने सुंदर क्वालिटी के चावल कहां से लाए हो। तभी छोटा हरिदास सोचता था कि अभी मेरी मेह लाया बोली बोलेंगे महाप्रभु खुश होंगे, लेकिन भगवान आचार्य कहे कि मेरे घर में तो था नहीं, मैंने इसे चावल मंगवाया कहां से, माधवी दासी से मंगाया। महाप्रभु कौन जाकर लाया, तो कहे कि मैं तो बिजी था, इसको भेजा किसको, छोटा हरिदास को भेजा, उन्होंने जाके लेके आया। इतना ही सुनते ही महाप्रभु गंभीर हो गए, कुछ बोले नहीं, भोजन तो किए, भोजन करने के बाद हस्त प्रक्षालन करके हाथ धो के अपने कुटिया में चले गए, गंभीरा में, काशी मिश्र के घर जहां जो गंभीरा कहते हैं, वहां जाकर गोविंद को कहे, गोविंद आज शाम को वो यदि आएगा कौन, छोटा हरिदास, गेट बंद उसके लिए, अंदर आने नहीं देना उसको, उसके साथ मेरा कोई भी संपर्क नहीं है आज से, उसको अंदर आने नहीं देना। कोई समझ नहीं पा रहा, महाप्रभु बड़े गंभीर थे, इसको पूछने के लिए हिम्मत नहीं था। तो शाम के समय फिर छोटा हरिदास प्रत्येक दिन आता, आज भी आया, आज तो बड़ा खुश था कि मैंने सेवा किया महाप्रभु के लिए। लेकिन गेट में आते ही गोविंद कहा कि आपको अंदर में आना मना है, अनुमति नहीं है, महाप्रभु ने मना किया आपको अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो क्या कारण है? मैं कारण महाप्रभु पूछने के मेरे हिम्मत नहीं है। फिर वो सोरू दामोदर गोस्वामी के पास गए, उनके सेक्रेटरी, ये तो सर्वेंट है, आज भी वो रीति रख रहे हैं जैसे महाप्रभु ने रखे थे, एक सेक्रेटरी एक सर्वेंट है। आज भी सन्यासी के पास में एक सेक्रेटरी होता है, जो माने जो लोग विशेष रूप में जो बड़े सन्यासी उच्च सेक्रेटरी सन्यासी और है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो सेक्रेटरी थे, उनके निज सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी को लेकर पूछे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी गए महाप्रभु को पूछने के लिए। जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी पूछ रहे थे गौरांग महाप्रभु, तो उन्होंने कहे कि वैरागी हैया करे स्त्री संभाषण, देखीते न पारी आमी तहार बदन। वैरागी आश्रम में रहकर, वैरागी था कोई नैष्ठिक ब्रह्मचारी या कोई वानप्रस्थी या कोई सन्यासी, वैरागी होया करे स्त्री संभाषण, एकांत स्त्री से बातचीत करता है, दुख सुख होता है, कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है, तुम कैसे हो, तुम्हारे भव, जो भी है कुछ बातचीत करना है एकांत में। वैरागी होया करे स्त्री संभाषण, देखीते न पारी आमी तहारा बदन, मैं इसके मुख नहीं देखने देख नहीं सकता, जो एकांत में जाकर स्त्री से बातचीत करता है, क्योंकि इंद्रिया इतनी प्रबल है, कोई कितनी उन्नत स्तर पर होने पर भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई कितना ही इंद्रिय संयमी क्यों न हो, स्त्री की उपस्थिति में उसका संयमित रह पाना लगभग असंभव है, संभव प्राय असंभव है, इतना आसान नहीं है। इंद्रिया बड़े प्रबल है, क्योंकि स्त्री कैसे आग के समान, ये पुरुष का घी के समान कहा गया, और सन्निकट में आएंगे तो इंद्रिया बड़े प्रबल है, उसके मन में इंद्रिय तृप्ति की भावना फिर जागृत हो सकता है। इसलिए महाप्रभु कहे कि उसका मुख नहीं देख सकता हूं, एकांत में स्त्री से बात कर रहा था, कोई खा कोई ऐसा ही कोई वेश्या नहीं थी, कोई साधारण स्त्री नहीं थी, माधवी दासी तो महान भक्तिमती स्त्री है, गौरांग महाप्रभु अंतरंग पार्षद में मानी जाती है, थ्री एंड हाफ, ये तीन है, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर और सिक्की मायती, और हाफ ये इनको माना जाता है, इनको माधवी दास। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने एक आदर्श सिखाने के लिए कि हमें कैसे कठिन कैसे नियमों को पालन करना चाहिए कड़क से, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सभी भक्त लोग आए कहे कि देखो महाप्रभु, वो तो रो रहा था, कौन छोटा हरिदास रो रहा था जोर जोर से, सभी वैष्णव के चरण में गिरता था, कहते मुझे कुछ कीजिए इसका, हम ऐसा मिस्टेक और कभी नहीं करेगा पूरा जिंदगी में। लेकिन महाप्रभु कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, स्वरूप दामोदर बोले, रामानंद राय बोले, जितने भी अंतर के पार्षद कहे कि महाप्रभु एक बार इसको क्षमा कर दो और नहीं करेगा ऐसा गलती, महाप्रभु किसी की बात नहीं सुने। यहां तक कि कहते कि गौरांग नित्यानंद जो गौरांग गौरांग बोल देते सुन लेते, नित्यानंद प्रभु भी जाकर बोले तब भी नहीं सुने, बोले नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, एक को तो मेरे साथ भेजा था, किसको, काला कृष्ण को भेजा था, वो मेरे साथ कैसा कैसा जो किया मैं जानता हूं, और वो मेरा तुम्हारा आदमी था इसलिए तुमको बोलने का इसको रख लिया, तो मैं कुछ मेरे को बोलने का अधिकार नहीं था, और ये मेरा आदमी है, ये डायरेक्ट मेरे शरण में है, कौन छोटा अभ्यास, इसके बारे में बोलने का तुमको अधिकार। नित्यानंद प्रभु की बात नहीं, देखो कैसे भक्त के नित्यानंद के शरण में रहने से कितने सेफ है, अर्थात नित्यानंद के प्रतिनिधि सदगुरु प्रभुपाद जी के शरण में रहने कितने सेफ है। काला कृष्ण को कोई एक्शन नहीं लिया महाप्रभु ने, वो तो भाग गया था, ये तो कुछ भी नहीं किया, कि थोड़ा जाके बातचीत किया माता जी से, लेकिन वो तो जाकर चले ही गया था, भट्टाहरी लोग ने इसको स्त्री धन के लोभ दिखाए, महाप्रभु के साथ रात को सोया था, छोड़ के भाग गया, महाप्रभु छोड़ के चला गया भट्टाहरी के साथ, वो जाकर रहने लगा, उनके घर में रुका था, महाप्रभु सुबह जाग उठ के जो पता लगा कि गया कहां, तो भगवान अंतर्जे में जाने, तो सीधे गए वहां, क्योंकि देखो तुम लोग सिर्फ वो भी सन्यासी जैसे ड्रेस पहनते थे, घर में रहते थे लेकिन गरुआ वस्त्र पहनते थे, गृहस्थ सन्यासी, क्योंकि देखो तुम लोग का तो कितने लोग है तुम्हारे सेवक सेवा करने के लिए, मेरे पास में सिर्फ एक आदमी है, तुम लोग कैसे क्यों रखा अपने साथ, मेरे को वापस कर दो, और फिर मेरा अपना आदमी होता तो मैं छोड़ देता ही, लेकिन वो दूसरे को ही मुझे दिया था, इसलिए मेरा ड्यूटी है कि इसको लेके वहां वापस करना उसको, इसलिए मुझे वापस करो। भट्टारी लोग गुस्से होकर मारे, उस ऊपर ने क्या फेंके, महाप्रभु के ऊपर है, वर्षा तरुआल है, खड़ग सब त्रिशूल जो भी था वो सब उठा फेंका, लेकिन जो महाप्रभु के ऊपर फेंक रहे थे वापस जाके उन्हीं के शरीर में लगने लगा। और सोचे कि ये तो हमसे भी कुछ ज्यादा काला जादू जानता है, सब डर के भाग गए, सीधे घर बार छोड़ के भाग गए, सब रह गया अकेला कौन, काला कृष्ण। महाप्रभु गए उसको शिखा पकड़ के लेके आए, खिचकी लेके आए, रो रहा था कौन, बोले कि तू मेरा आदमी होता तू मैं केयर नहीं करता, ही तुझे फक यहीं छोड़ के जाता, लेकिन तू है दूसरे का, लेके जाऊंगा तुझे पूरी तक, मन को जमींदारी करना उसके पास जमा करना पड़ेगा है? फिर महाप्रभु उसको दंडित नहीं किए, उसको लेके आए, लेके आए कि फिर पूरी तक लेके आए, ला के नित्यानंद प्रभु कहेगी ये तुम्हारा आदमी है, अभी ये मेरे को बोला था बहुत अच्छा ब्रह्मचारी मेरी सेवा करेगा, और क्या क्या किया इसको है? आज से इसका साथ मेरा कोई भी संपर्क नहीं है, तुम्हारा आदमी तुम संभालो, लेकिन फिर बस छोड़ दी। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु इतने दयालु थे, काला कृष्ण को त्यागे नहीं, बंगाल में भेज दिए, किसके लिए, प्रचार में, जाओ उधर नामहट्ट प्रचार में शामिल हो जाओ, फिर भेज दिए। लेकिन गौरांग के शरण में डायरेक्ट था काला कृष्ण, ने सॉरी छोटा हरिदास, काला कृष्ण बच गया, नित्यानंद के शरण में था और उसको क्षमा नहीं किए, नित्यानंद प्रभु कहने पर भी नहीं सुने, तो सब बोले कि चलो नित्यानंद के बाद ये सब चला गया, तो ये इसको भेजते परमानंदपुरी, माधवेंद्रपुरी के शिष्य गौरांग महाप्रभु बहुत सम्मान करते, इनको अपने गुरु के समान सम्मान देते, ईश्वरपुरी के गड ब्रदर है माधवेंद्रपुरी के शिष्य, ऐसा ही उद्धव के अवतार माने जाते हैं परमानंदपुरी, उनको बोलते वो बोलेंगे आके। तो परमानंदपुरी सभी भक्त कहने पर आए, वो भी आकर कहे कि महाप्रभु सभी भक्त ने मिलकर मुझे कुछ कहे, आपको कुछ व्यक्त करने के लिए। महाप्रभु तो इनको बड़ा सम्मान के साथ अच्छे आसन से बैठाए और उनसे बहुत प्रेम से बात की, कैसे क्या सेवा कर सकूं है? कि अपने गुरु के समान उनको व्यवहार करते थे। तो उन्होंने जब कहा कि सारे भक्तों लोगों का यही इच्छा है कि इस बार इसको क्षमा कर दिया जाए, किसको, काला कृष्ण को, सॉरी छोटा हरिदास को इसी टाइम क्षमा कर दिया जाए। तभी महाप्रभु ने खड़े होकर सीधे कहे, गोविंद मेरा दंड कमंडोल पकड़ो, चले यहां से अलारनाथ चलते हैं, यहां हमारा रहने का लायक स्थान नहीं है, सीधे जाने के लिए तैयार होगी कुटिया छोड़ के। बहुत अस्तव्यस्त होकर उनको संभाले कौन, वो परमानंदपुरी कहे कि नहीं नहीं ये मैं नहीं चाहता, ये तो भक्तों लोग ने बोले थे, मैं बोल दिया, ये मेरा बात नहीं है, मैंने स्वयं नहीं बोल रहा हूं ऐसा करने। तो फिर महाप्रभु शांत हुए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, सिखाने के लिए कि स्त्री के संग आध्यात्मिक जीवन के लिए किस प्रकार घातक है। उन्होंने एक साल तक हरिदास, छोटा हरिदास, सब लोग कहे कि अरे वेट करो, थोड़ा थोड़े दिन के बाद महाप्रभु के मन बदल जाएगा। एक साल तक प्रतीक्षा किया, महाप्रभु कॉम्प्रोमाइज नहीं कि कुछ भी नहीं बोले, तो आकर इलाहाबाद में गंगा जमुना सरस्वती के संगम में क्या कर दिया, शरीर त्याग दिया है वहां जंपिंग करके। इसलिए आज गवर्नमेंट बंद कर दिया ओटली को, बोले ये पुराणों में लिखा गया है शास्त्र में, इलाहाबाद में जो अक्षय वट है जमुना के किनारे, अक्षय वट में वहां जब कोई चढ़कर उसमें कूद के जमुना में कूद के शरीर त्याग देगा और सीधा गोलोक वृंदावन में जाएगा। इसलिए बहुत मरते थे वहां कूद के, इसलिए गवर्नमेंट बंद कर दिया पूरा सीधा है, वहां कोई नहीं, कोई विशेष दिन में साल में कोई एक दो बार बस केवल दर्शन किया जाता, पैर दूर से लगा हुआ बाउंड्री, दूर से केवल पेड़ को देख सकते हैं, नहीं तो पेड़ में चढ़कर कहीं कूदते थे। प्रभुपाद जी का भी एक शिष्य है कौन, विष्णुजान स्वामी, उन्होंने भी ऐसे ही किया। ये प्रभुपाद ने छोटा हरिदास का कथा एक बार मॉर्निंग वॉक में कहते थे मायापुर में, तो उनका कुछ व्यतिक्रम था मैंने उनकी, तो महाप्रभु ने जो प्रभुपाद ने कही कि ऐसे ही प्रायश्चित है जो अवैध स्त्री संग करता उसके लिए, तो उन्होंने सीधा आकर वहां कूद गए। लेकिन प्रभुपाद ने जब इस बात को सुना बड़े दुखी हुए, क्योंकि इसके आगे और प्रभुपाद कुछ कह रहे थे वो सुनने के लिए इनके पास धैर्य नहीं था, सीधे आके छोटा हरिदास का अनुगमन किए। प्रभुपाद ने कहे कि इसकन के भक्तों को ऐसा नहीं करना, मैं गौरांग महाप्रभु नहीं कि वो आप लोग छोटा हरिदास नहीं हो है? लेकिन यदि भी कोई किसी के पतन किसी कारण से होता है, स्त्री प्रति आकर्षण हो गया, लेकिन फिर भी उसको सुसाइड नहीं करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर हरे कृष्ण महामंत्र के जप और कीर्तन में लगा रहना चाहिए। हरे नाम हरे नाम इव केवलम कलो नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव गति अन्यथा है। आठम स्कंद भागवत में प्रभुपाद तात्पर्य फिर लिखते हैं ऐसा नहीं करना। भक्तों की किसी कारण से यदि कुछ आध्यात्मिक पतन भी होता है लेकिन फिर भी भक्तों की संगति में रहकर हरिनाम के आश्रय करने से फिर भी उसकी उद्धार हो सकता है। लेकिन इस श्लोक से हमें जानना चाहिए कि कितनी घात स्त्री संग आवश्यकता के अला यदि थोड़ा सा भी इंद्रिय तृप्ति का मिलन होता है मिलजुल रहता है इंद्र तृप्ति का तो उसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कई उदाहरण शास्त्र में दी गई है। भगवदगीता में ऐसा ही श्लोक भी जजात महाराज जजाति के उपाख्यान में भी आता है। मातृ श्वश्रु दुहितुवा न विविक्तासन भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांस भी कर सती। वहां भी कहा गया भागवत में ये महाराज जजाति के उपाख्यान में तो हमें कहा गया कि मातृ चाहे माँ हो सास क्यों न हो मातृ ससुर दोहित्र अपने पुत्री क्यों न हो न विविकता आसन अभवे एकांत में एक ही आसन पर नहीं बैठना चाहिए है? सटकर एक साथ में नहीं बैठना चाहिए न विविकता आसन अभवे क्योंकि बलवान इंद्रिय ग्राम इंद्रियां इतनी बलवान है विद्वांस भी कर सकती बड़े बड़े विद्वान को भी मोहित कर देती है? कितना उदाहरण है पुत्री का पीछे कैसे भाग सकता व्यक्ति अपने पुत्र लेकिन ये उदाहरण स्वयं ब्रह्मा जी का प्रस्तुति है। ब्रह्मा जी ने वो भी एक आदर्श केवल आम सिखाने के लिए वो भाग गए बाघ देवी हैं बाघ को जब जन्म किया अपने पुत्री को जन्म करी को सौंदर्य से मुग्ध होकर उसके पीछे भागे हैं। नारद जी ने भाग गए किसके पीछे विश्वमोहिनी के पीछे हैं। वो बड़ा कहानी उसको सारे नहीं कह रहा। और शंकर जी यदि वैष्णवानंद यथा शंभु लेकिन भगवान के साथ जो ऐसे कहे तो भगवान ने मोहिनी मूर्ति धारण करके उनको अपने माया शक्ति का प्रभाव को दिखाया वो मोहिनी के पीछे भागे वस्त्र तक भी निकल गए वो पता नहीं चला सीधे भागे उसके साथ उसके पीछे। ये भगवान की माया शक्ति का एक प्राकट्य है वो उन्हें इसी के माध्यम से मोहित करते सबको। ममा माया दुरतया जो शुद्ध भक्ति नहीं किया जब तक शुद्ध भक्त नहीं बना इसके प्रभाव से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। तीसरे अध्याय में भगवत गीता में भी श्लोक आता है आवृत ज्ञान मेतेन ज्ञानीना नित्य बैरिणा काम रूपेण कौंतेय दुष्कुरेण लड़ेन च। ज्ञानी बड़े बड़े ज्ञानी सोचेंगे हम शास्त्रविद सब कुछ जानते हैं हमारा मन कैसे विचलित हो ज्ञानी जो मूर्ख होते वो विचलित तो हो सकता लेकिन भगवान ने स्वयं कहा था कि ज्ञानी ना नित्य बैरी ना बड़े बड़े ज्ञानियों की बैरी है जलस्टी डिजायर काम वासना है ये बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोहित करने वाले ही हैं। ज्ञानी नांग नित्य बैरी नाम अगला लाइन क्या काम रूपेण कौनते हे कुंती पुत्र जलस्टी डिजायर के रूप में ये उद्रेक हो जाता है सभी को मोहित कर लेता है। ये श्लोक व्यासदेव जी ने पढ़ा रहे थे गुरुकुल में आए सबको बैठा कर अपने शिष्य में इनमें से एक शिष्य था जैमिनी है जैमिनी बैठ के सुन रहे थे तो कहे कि गुरुजी मैं इसको विश्वास नहीं करता हूं ये कैसा संभव है ज्ञानी ना नित्य बैरी ना ज्ञानी का कैसे बैरी बन सकता है जब मूर्ख है मूर्खों की बैरी हो सकता है उनके मन मति विचलित हो सकता है इसको मन इंद्रिया विचलित कर सकते हैं जो ज्ञानी है उसको कैसे होगा मैं इसका स्वीकार नहीं करता हूं। व्यासदेव ने कही कि अरे बेटा ये भगवान ने स्वयं कहा है विश्वास कर ले। बोले नहीं नहीं मैं नहीं विश्वास करता हूं ठीक है तुझे समझाता हूं समय आने पर समझाता हूं। कहानी आप जानते हैं व्यासदेव जी ने योग शक्ति में तो जमीनी अपने जंगल के अंदर कुटिया बना के रहे थे कई ब्रह्मचारी और भी उनके साथ रहते थे बस अब वो योग शक्ति के बल पर व्यासदेव जी ने सही बादल छाया दिया पर अंदर रात में बादल छा गया झड़ तपना थोड़ा थोड़ा ठंडी हवा बहने लगा बारिश टपकने लगा और स्वयं स्त्री का रूप धारण कर लिए कौन व्यासदेव जी योग शक्ति में स्त्री रूप धारण करके जयमिनी मुनि के आश्रम जाकर आवाज किया, कॉलिंग बेल दी, उस कॉलिंग बेल नहीं हो, टक 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 के होंगे। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, कौन आवाज कर रहा है? तो देखे वो स्त्री का स्वर है, स्त्री का कंठ स्वर, कंठ ध्वनि है। कह रहे थे कि महात्मा जी मैंने रास्ता भूल गया, जंगल में घूमते घूमते बारिश हो रहा है, झड़ तूफान हो रहा है, मुझे थोड़ा आश्रय चाहिए थोड़ा समय, कुछ समय के लिए। उन्होंने कहे कि ये ब्रह्मचारियों के आश्रम है, यहां पर स्त्री का स्थान नहीं है, स्त्री का कंठ, तुम और दूसरे आगे देखो। बोले आगे कोई स्थान नहीं, आसपास में कोई भी कोई आश्रय नहीं है, आप कैसे महात्मा हो? मेरी जान निकल जाएगी क्या, एक प्राणी का जीवन रक्षा नहीं कर पाते हो, हैं? कैसे महात्मा जान? तो वो जमीन कहे कि ठीक है, हमारे जो गेट के साइड में ही चौकीदार का कमरा है, गार्ड का कमरा है, तो उसी में राजा ने निकल जाना तुरंत, वस्त्र छटते हैं जो वस्त्र बारिश छोड़ते ही निकल जाना है, जैसे हमारा कोई ब्रह्मचारी तुम्हारे सकल न देखे। तो कहे कि महंत जी आपके तो गेट बंद है, लॉक है। तो जय मैंने कहे कि ठीक है गेट खोल देता हूं, वो चाबी लेकर आगे गेट खोलने, और गेट खोल दिए। गेट खोलने के समय में एक नजर उनके पर पड़ा, किसका पर? तो अरिजिनल स्त्री भी नहीं, व्यासदेव जी ने स्वयं को स्त्री रूप धारण कर खड़े थे, लेकिन बारिश में भिगा हुआ शरीर, साड़ी फाड़ी भीग गया था थोड़ा सा, है? शरीर का भिन्न अंग उनको दिखाई पड़ता था, और सीधे चाबी खोल दी, बस उनको चले गए वापस कमरे में। लेकिन जो सोने के लिए जा रहे थे, बार बार उस स्त्री का छवि सामने आते रहा जो देखे थे गेट खोलने के समय में। कितने भी प्रयास किए उस रूप को भूलने के लिए, भूल नहीं सके, बार 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 उनके आंख में सामने वही छवि आने लगा, है वो युवती स्त्री का छवि। तो मन इतना विचलित किया, बोले अरे स्त्री तो यहीं पर है, मिल लेता हूं, निकल के आ गई रूम में, आकर फिर दर्जा खटखट के, अरे खोलो खोलो। बोले नहीं नहीं, आपने मना किया था मुझे, जयमिनी जो मठ के महंत है, उन्होंने कहे कि मैं किसी मैंने किसको मेरा शकल नहीं दिखाऊंगी, मैंने तो केवल बारिश हो रहा थोड़ा छुप यहां रहता हूं, बारिश छोड़ते ही चले जाऊंगा, मना है मुझे, किसी के लिए भी दर्जा नहीं खोलूंगा, मैं अकेले रहूंगा अंदर में, बारिश छोड़ते ही चले जाऊंगा। अब बोले मेरी मैंने वही जेमी नहीं हूं जिन्हें ने तुझे आदेश दिया था। बोले नहीं नहीं, कोई भी हो मैं नहीं खोलूंगी। तो इतना इनके प्रबल होने लगा, उत्तेजना होने लगा, इंद्रिया ऊपर उठ गए, छुपड़ी का वो झुपड़ी था तो उसका ऊपर का छत को होल बना दिया, होल बनाकर नीचे कूद गए। नीचे कूद गए तो सोचे कि मैं अभी वो स्त्री को आलिंगन कर रहा हूं, आलिंगन करने गए, वो तो कपड़ा ऐसे कपड़ा को ढंग के से बैठी हुई, तो आलिंगन करने गए तो व्यासदेव जी ने अपने मुख से कपड़े को हटा दिए, दाढ़ी है। बोले गुरुदेव, बोले मूर्ख तुझे समझ में आया? समझ में आया, तुझे बोला था भगवान ने कहे कि आपरू तो ज्ञान है, तो ना ज्ञानी ना नित्य वैरी ना, ये ज्ञानियों की भी नित्य वैरी है, तो समझ में आया? अभी भगवान ने कहा तो भगवान की बात को भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानी ना नित्य वैरी ना काम रूपेण कौनते दुष्कुरेण न लेना चाहिए। लस्टी डिजायर अंदर में ऐसे सुप्त अवस्था में है, और मौका मिलने से वो जागृत हो जाता है, चाहे कितने हम प्रयास करके भी ब्रह्मचर्य पालन करके कितने नष्टिक ब्रह्मचारी बन गए, वानप्रस्थी सन्यासी हो गए, लेकिन यदि एकांत में ये श्लोक कह रहा है कि स्त्री कैसे आग के समान है और ये पुरुष घी के घड़े के समान है, यदि सन्निकट में आएगा और पिघलेगा, इसलिए सदा इनको दूर में रहना है ब्रह्मचारियों के लिए। इसलिए आठ प्रकार के अनुबंधन लगा गया है, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम है, और आगे क्रिया निवृत्ति है, बच्चे से आठ प्रकार के कहा गया है। स्त्रियों के स्मरण करना ब्रह्मचर्य का काम नहीं है, स्त्री के बारे में चिंता करना, इनका कुछ कैसे वो माताजी है, माताजियों की जजमेंट करना इसका काम नहीं है, किसका? ब्रह्मचर्य, वो कैसा है, ये कैसा, वो अच्छा है, ये ठीक नहीं है, ऐसे ये सब काम नहीं है। माताजियों की स्मरण करना, स्त्रियों की स्मरण करना, विशेष रूप में प्रमदा शब्द इसमें उपयोग हो गए, जो युवती स्त्रियां हैं, प्रमदा जो पुरुषों के मन को मोहने वाली है, रूपा जी अनुवाद करते हैं। स्त्रियों की चिंतन नहीं करना ब्रह्मचारी को है, केवल ब्रह्मचारी नहीं गृहस्थ को भी, अपने पत्नी के अलावा दूसरे स्त्रियों की चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य पंडित कहते कि मातृवत परदारेशु, दूसरे पत्नी को मां के समान ज्ञान करना। गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थ है उसके जौन संबंध केवल जौन संबंध अपने स्त्री से है, और फिर भी कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए अन्य के लिए, यदि वो अवैध उपाय से इंद्रिय स्तुति के लिए स्त्री संग करता उसको भी वर्जित की गई, शास्त्र में इसको भी मना की गई है। तो इसलिए ये बड़ा वैदिक संस्कृति में हम देखे हैं, घर में जो आज भी गांव में जाओगे तो घर में प्रवेश करोगे पहला एक अंगन होगा जहां पर गेस्ट लोग आगे बैठते हैं, फिर अंदर में जाओगे तो स्त्रियां सब घर में रहते अपने कमरे में रहते हैं बाहर नहीं निकलते, और दिन में भी इसको अपने पति से भी अच्छे से मिलजुल करना बात करना भी नहीं, केवल रात में गुरुजनों के सामने बात करिए, जो वैदिक संस्कृति है। तो लेकिन यहां पर कहते कि इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि प्रमदा नाम ही बन्नी, ये अग्नि के समान है, पुरुष जो होता है घी की घड़े के समान, सन्निकट आने से एकांत में फिर उनके मन में इंद्रिय उत्तेजित हो जाते हैं, भोगने की वासना आ जाती है। इसलिए विशेष रूप में है कि स्त्रियों के स्मरण नहीं करना, स्त्रियों के बारे में चिंतन नहीं करना, स्मरणम कीर्तनम, कीर्तनम का था जो उसके बारे में चर्चा करना, स्त्रियों के बारे में वो स्त्री कैसा है, वो कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, ऐसे चर्चा करना कोई पुरुष के काम नहीं है, ब्रह्मचारी को विशेष रूप में काम नहीं है, सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थियों के काम नहीं है। स्मरणम कीर्तनम केली, केली का अर्थ मजाक करना है। दो ब्रह्मचारी थे उसमें से एक ब्रह्मचारी शादी कर लिया, तो फिर वो ब्रह्मचारी का जो शादी कर लिया तो उसका पत्नी को बोलेगा ये तो भाभी है हमारा, भाभी जी कैसे हैं, ठीक चल रहा है ना, स्त्रियों को भाभी बोलना, बहन जी बोलना, ये शब्द से उपयोग करना प्रभुपाद जी ने अनुमोदन नहीं किया। केवल 12 साल की जो भी स्त्री, जो भी लड़की जो 12 साल से प्राप्त वयस्क का हो चुका है, मां बनने की योग्य बन गई है, तो उसको फिर क्या बोलना, मां ही बोलना, ये प्रभुपाद जी के नियम है। एक ब्रह्मचारी ने मुझे बोला कि महाराज मैंने एक मॉल में गया था कुछ सामान लेने के लिए, कुछ खरीदने के लिए गया था डेटी के लिए, तो मॉल में गया तो जो रिसेप्शन में एक यंग लड़की बैठी थी, 17-18 साल की उम्र में एक लड़की बैठी थी, मैं इसको गया बोला माताजी ये सामान का रेट क्या है, तो बोला वो तो आग की तरफ हो गई, बोला तेरे माँ जैसे मैं देखती हूँ तुझे, मेरा शादी भी नहीं हुआ तुझे माँ बना दिया मुझे क्या बना? इतना गर्म हो गई, इतना डांटने लगी, और जितने जो पब्लिक थे वो भी सब उसको सपोर्ट किए, किसको, लड़की, बोले तुम सारे फैनाटिक हो इसकन वाले, क्या कर रहे हो इसको आके, यंग लड़की है तेरे पास, उसकी माँ बोला माता जी कह रहा है, बेचारा परेशान, बोला मुझे इतना गाली खाना पड़ा उधर मैं तो समझ से आया, तो उसके कहना था कि मैं जब इसको कहता था कि बहन जी आप कैसे हो, बहन जी ये रेट का ये सामान का क्या, तो कुछ नहीं बोलती, मुझे ये कहना उचित नहीं था क्या माता जी, क्योंकि तुम प्रभुपाद जी के आदेश को उल्लंघन नहीं करना, प्रभुपाद जी का आदेश तो है, तुम जो कृष्ण भक्त होते हैं बड़े चतुर होते हैं, हरि नाम कृष्ण नाम बड़ा ही मधुर, जेई जन कृष्ण भजे से बड़ा चतुर, अरे तो मैं इसको ये सब एड्रेस कर तुमको स्थान काल परिस्थिति देखकर कहना था कि हरे कृष्ण सामान का रेट क्या है, वो बोलेगी नहीं, वो कुछ नहीं बोला, बोला हरे कृष्ण सामान का क्या रेट है बताएगी, तुमको अपना दिमाग होना चाहिए, जो प्रभुपाद जी के आदेश को भी हम उल्लंघन नहीं करेंगे लेकिन हम परिस्थिति को भी संभालेंगे। इसलिए हमारे पास बुद्धि होना चाहिए कैसे परिस्थिति को संभालना है। ये शास्त्र कहता कि स्मरणम कीर्तनम केली, मजाक नहीं करना स्त्रियों से, स्त्रियों से मजाक नहीं करना, कभी मजाक करना शुरू कर देते ना, नहीं मजाक नहीं करना, बड़ा सीरियस रहना। स्मरणम कीर्तनम केली प्रक्षणम, विसर्जन को डायरेक्ट देखना, उनके मुख को देखना डायरेक्ट, लक्ष्मण जी मेघनाथ भाई इंद्रजीत को मारने के लिए सक्षम हो, क्योंकि जो 12 साल ब्रह्मचारी जो पालन किया वो मारेगा उस राक्षस को, बड़ा चिंतित हो गया कौन ऐसे ब्रह्मचारी कहां ढूंढेंगे, लक्ष्मण कहेगा मैं मारूंगा, बोला अरे तू तो हमारे साथ रह, रामचंद्र के तू तो सीता हम साथ में रहा था, सीता के मुख देखा नहीं, कभी बोले नहीं, मैं कहां देखता था चरण को, लक्ष्मण जी अपने भाभी है कौन सीता, फिर भी चरण को देखते थे माँ के समान उनको, तो इसलिए आदर्श निभाया है सब में ब्रह्मचारी जो है, जैसे लक्ष्मण जी है जो ब्रह्मचारी जो है, कुछ सम हनुमान जी है, भीष्मदेव है, है? यदि ब्रह्मचारी कोई भीष्मदेव तो फिर दूसरे को शादी कराने के लिए, भाई को शादी करने के लिए गए थे इसको कहा काशीराज के तीन लड़कियों को उठा के लेके आए, लेकिन उसके लिए उनको सताना पड़ा है। अम्बा ने प्रतिज्ञा ली मुझे शादी करना नहीं था, तो उसके पास शादी तो नहीं की भीष्मदेव, उसके लिए तो लड़ाई कर ली है किसके साथ, परशुराम साहब के साथ भी, लेकिन वो उनके मृत्यु को कारण बनकर दूसरे शरण में आई, किस रूप में शिखंडी बन के आई है। स्त्रियों के साथ में मजाक नहीं करना, उनके साथ टक्कर नहीं देना है, हॉट पकड़ लेते तो छोड़ेंगे नहीं है। जो स्त्रियों के साथ झगड़ा होता है, स्त्रियों की कुछ नुकसान नहीं होता है, झगड़ा करने वाला व्यक्ति की नुकसान होता है, है? इसलिए बड़े सावधान से रहना। तो लक्ष्मण जी तो इसलिए ब्रह्मचारियों को सदा स्त्रियों को डायरेक्ट प्रक्षणम डायरेक्ट इनको देखना नहीं, उनके मुख को आई कॉन्टैक्ट, नो आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट होता सब बिगड़ेगा, इसलिए सीधे नहीं देखना, सीधे बस चरण को देखो बा कुछ है? तो इसलिए प्रक्षणम डायरेक्ट काम लोलुप होकर स्त्रियों को देखना नहीं चाहिए, तो फिर वो हमको सर्वनाश करेगा है व्यक्ति, फिर आध्यात्मिक इसका आध्यात्मिक पतन होना संभावना है। इसलिए प्रक्षणम गुह्य भाषणम, जैसे गुह्य भाषण किया कौन छोटा हरिदास एकांत में थोड़ा बातचीत किया, ये भी मना है, है? चाहे माता जी कोई थोड़ा उम्र की है और ब्रह्मचारी, फिर भी यार कोई लेकिन उम्र भी तो वो भी था उम्र की कौन माधवीदासी और न तो भक्ति भक्ति करती थी महाप्रभु के, लेकिन फिर भी महाप्रभु इसको टॉलरेट नहीं किया है? ये सम ये उचित नहीं है, है? गुह्य प्रक्षणम गुह्य भाषणम, बस की अला कोई प्लान नहीं बनाना चाहिए किसी माता जी से एकांत में जाके तो कैसे मिलूंगा, अच्छा माता जी है, है? थोड़ा सा उसे पूछता हूँ कहाँ पर है, उनकी कहाँ रहती हो, है? उसका हस्बैंड क्या करती है, ये सब डाटा लेना आपका काम नहीं है, है? तो क्या करते क्या करके है? फिर दूसरा दिन माता जी ब्रह्मचारी के लिए थोड़ा प्रसाद बना के लिए क्या आएगी, बोला तुम पर आस्ते आस्ते संबंध बढ़ते रहेगा नहीं, तो इसलिए कोई माता जी से चर्चा करना अपने दुख सुख, दुख सुख चर्चा, माता जी मंदिर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है क्या करना माता जी, है? वो काम ब्रह्मचारी का नहीं, वो माता जी सवाल नहीं, माता जी थोड़ा हो तो फिर बोले बेटा तुम्हारे लिए मैं व्यवस्था करती हूँ, फिर कहीं बेटा है तो माँ को फिर नहीं बेटा बोल रहा तो फिर शादी कराएगा उसकी, है? तो थोड़ा दूर रहना, तो इसलिए उसे बातचीत नहीं करना, प्लान नहीं बनाना चाहिए किसी माता जी को मिलने के लिए, प्लान बनाएगा तो आस्ते आस्ते संबंध सृष्टि होगा, फिर आस्ते आस्ते मानसिक स्तर पर कई प्रकार की चिंतन आने लगेंगे, फिर अंत में मैथुन आगार जीवन में गिर जाएगा व्यक्ति। इसलिए इसको बड़े सतर्कता से भागवत में बार 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 हमको सतर्क किया जाता है कि कितनी कितनी घातक है, यदि कोई आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहते आध्यात्मिक दिग में सदा सतर्क रहे। एक माता जी है लंदन में, उसको पूर्वजन्म याद है, पूर्वजन्म एक ब्रह्मचारी था, प्रभुपाद जी के शिष्य था, वो कई आर्टिकल्स वो खुद लिखी है, अभी अभी तो माता जी है लेकिन पूर्वजन्म में ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी का जीवन थे, प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, और लंदन की रथ यात्रा में क्या करते थे, किताब वितरण करता था, उस समय तो ब्रह्मचारी था, किताब वितरण करते लेकिन हटा दिया वो गांव मैंने क्या है, लेकिन एक एक लड़की के प्रति उसकी आसक्ति था, वो लड़की की चिंतन करते थे, करते करते है बुक तो था ऐसा ही, अन्य मनस को थोड़ा थी, वो लड़की की चिंतन करती थी, रोड को क्रॉस करना था दूसरी साइड जाना था, उसको ध्यान नहीं था कि ट्रक आ गया, ट्रक आके मार दिया, बस स्पॉट डेथ हो गया, तो चिंतन किसकी करता था, लड़की का, तो अगला शरीर लड़की की मिल गई, लेकिन भक्ति की तो उसको पूर्वजन्म भगवान की इच्छा से स्मरण है, वो जन्म हो गया तो लड़की के शरीर में फिर वो उसको देखता था कि वो जो पहले जो पूर्वजन्म जो लड़की के साथ उसका आसक्त था तो उसको लड़की को देखते ही आसक्ति हो जाए, लेकिन अभी भी ये लड़की वो भी लड़की है क्या होगा छोटा, फिर वो फिर वो जब सब मैंने बहुत वो डाटा पर जिस घर में वो जन्म ली सब कुछ बता देते कहाँ है क्या है सब पूर्वजन्म तो उनका याद है पूर्वजन्म। तो इसलिए हमको जानना चाहिए कि ये शरीर केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, हम न स्त्री है न पुरुष है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद अभेद प्रकाश, भगवान चैतन्य महाप्रभु इसलिए कहे हमारे स्वरूप को जानना चाहिए। हम जीव के कृष्ण के नित्य दास है, कभी स्त्री के शरीर में कभी पुरुष के शरीर में, उसमें क्या लेना देना, हम किसी भी स्त्री में शरीर में है, हमारा मुख्य कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना है? मांग ही पार्थ विपाशित्यस्ते अपिसु पाप जनय स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तेपी जानति परांगति। जो भगवान को आश्रय करके भक्ति करने से कोई भी व्यक्ति उद्धार हो सकता है, इसलिए हमारे जो काम है असली काम है भगवान की भक्ति करना। हमारे काम नहीं कि इंद्रिय तृप्ति के साधन के लिए थोड़ा सा कहीं ढूंढते रहना मौका, ये हमारा काम नहीं है। तो इसलिए अगला श्लोक कहेगा जब तक कोई व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार केंद्र पर हायर लेवल में नहीं आया, ऐसा ही तो भागवत कहता कि एक व्यक्ति केवल भाई एक चरित्र केवल भागवत में है जो कि स्त्री के द्वारा प्रभावित नहीं हुआ, वो है नरनारायण ऋषि। स्वयं भगवान ने नारायण ऋषि के रूप नरनारायण ऋषि के रूप में आकर आए थे, तो उन्होंने इससे बचा, नहीं तो कोई पर्सनैलिटी नहीं जो बचा। सुखदेव गोस्वामी कहते सभी का आकर्षण कर सकता है, कौन अपोजिट सेक्स में आकर्षण सभी को हो सकता है, ये बड़े सतर्कता से इसे बचना चाहिए, ये माया के सबसे बड़ा अस्त्र है। इसी अस्त्र के माध्यम से माया हमको गिराती है, कहां से भक्ति से लाकर माया में डालती है। माया अर्थात जो है नहीं वही माया है, नाम स्त्री है नाम पुरुष है। अगर पुरुष का शरीर में आ गया तो सोचते मैं पुरुष हूं, कोई स्त्री के शरीर में तो सोचते मैं स्त्री हूं। इसीलिए नारद मुनि ने फिर पुरंजन के उपाख्यान में सुना है महाराज पुरंजन के उपाख्यान में प्राचीन भविष्य को सुनाए, तो वो कैसे स्त्री की चिंतन करके मरा तो स्त्री का शरीर है, स्त्री भी पुरुष का चिंतन करके मर गया तो पुरुष का शरीर। इसलिए ये शरीर के चिंतन में शरीर के इसी में आसक्त नहीं होना चाहिए। युक्त वैराग्य को स्वीकार करते हुए अनासक्तस्य विषयां यथार्हो उपवंजित निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। इसलिए इस तात्पर्य ग्रंथ में प्रभुपाद जी ने लिखा कि यदि कोई पुरुष स्त्री के इस मूल सिद्धांत को नहीं समझता है तो निरा पशु है। यदि सोचते कि नहीं नहीं मैं ये क्या है फनाटिसिज्म है ऐसे वो कुछ बोलता है, लेकिन नहीं वो फिर पशु का जीवन बिताता है, जितनी आवश्यक है इतना ही है। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों के संगति से भी बचना चाहिए, स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही केवल मिलना चाहिए अन्यथा नहीं, केवल भगवान की सेवा के लिए। अन्य अपना इंद्र तृप्ति की थोड़ा सा भी कहीं चांस है तो फिर वहां थोड़ा दूर रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। समय हो चुका, कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसके? वो कोई प्रश्न पूछ रहे हैं?
हरे कृष्णा। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे इस्कॉन में माता जी गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि ब्रह्मचारी बात नहीं करता है, ऐसा है। माता जी लोग गुस्सा हो जाती है, बोलते हैं कि ब्रह्मचारी घमंडी है बात नहीं करता है, ऐसा ऐसा होता है कभी कभी।
मैं समझ गया, लेकिन उसमें आपको क्या देना है? आपका टोल है, आपका वैष्णव का सबसे पहला गुण क्या है? तितिक्षव, सहन करना, सहन करना सीखो। ठीक है, टॉयलेट करो। माताजी गुस्सा होते, वैष्णव गुस्सा होते या आशीर्वाद देते, दोनों तुम्हारे कल्याण के लिए होता है।
हरे कृष्णा महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया है पहले, तो गंगा जो त्रिवेणी में जो जंप कर लेता है वो गोलक चला जाता है, वो एक वृक्ष है, वो वृक्ष के ऊपर चढ़ के अगर हम जंप करता है कोई भी तो गोलक चला जाता है। तो गंगा जी में इतने सारे जीव है, मछलियां हैं, वो सब गंगा नदी में जन्म लिए और गंगा का पानी पिए, गंगा में ही मृत्युकरण किए, तो सबके सब गोलक चले जाएंगे?
सदा गंगा के साथ में रहते हैं, हैं? उनका नियंत्रण जमराज के हाथ में नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे वृंदावन में कोई शरीर त्यागता है, वृंदावन में सुअर भी है, कुत्ता है, बंदर है, ये शरीर जब त्यागते तो उसको वृंदावन में शरीर त्यागता है, उसको जमराज का अधिकार नहीं है, उसकी नियंत्रण डायरेक्ट भगवान के द्वारा होती है। जैसे कहते कि एक लाइफ टाइम इनको भोगना पड़ता है, एक लाइफ टाइम भुगते हैं, है? तो जैसे कोई बंदर है तो प्रभुपाद जी कहते कि ये बंदर जो वृंदावन के हैं, जैसे फॉल डाउन सन्यासी है, बाबा जी सन्यासी पिछले जन्मों में हैं, ऐसे बैरागी बनकर फिर स्त्री संघ की मति रखा तो इसलिए बंदर बना अभी है, कुत्ता बन गया, बंदर बना है, कुछ भी खाया संजम नहीं है जीवा का, क्या बना? सुअर बना। लेकिन कि वृंदावन में ही रहता है इसलिए उसके नियंत्रण भगवान के हाथ में डायरेक्ट है, तो एक लाइफ टाइम इसको भोगना पड़ता है। इसलिए गंगा जी में जो रहता है वो गंगा में है? गंगा जी उसकी उनके कल्याण सोचते हैं, है? उनके हमको चिंतन करने के, हम आप भी मछली बनना चाहते हैं क्या गंगा में, है? उसकी चिंतन करने की जरूरत नहीं है, है? कोई पूछा है कि आप लोग बोलते स्कन वाले मछली नहीं खाते हो, ये सुनी खाते, गरुड़ जी भगवान को कान में लेकर घूमता है, गरुड़ जी मछली खाता है, सांप खाता है, नहीं बंगाली बोला मुझे, बोले गरुड़ जी भी मछली खाते हैं, हैं? जब मछली रहता जड़ेर फल है, ठीक है गरुड़ जी मछली खाते हैं, लेकिन गरुड़ जी जो मछली खाते हैं गरुड़ के मालिक उस मछली को कहां भेज देते, उसके आत्मा को वो गोलक गरुड़ जी की सेवा में लगा, इसलिए डायरेक्ट वैकुंठ में जाएगा। तुम यदि मछली खाओगे जमदूत तुम पिटाई करके बांध के लेके जाएंगे कहां, जमराज के दरबार में, है? हम किसी की इमिटेशन नहीं कर सकते, कौन क्या करता है, बोले हम कहां पर है और हम कैसे उद्धार होंगे उसकी सोचे, है? दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थधम, ये मनुष्य जन्म में है तो हमारा शरीर इसको उपयोग करें कृष्ण की भक्ति में, हमारे जो प्रहलाद महाजन लोग कहे है उनके अनुगमन करें, उसको फॉलो करें, है? ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। निताय गुरु प्रेमानंदी हरि गुरु निताय।